लघु वासुदेव मननम में विवेकी और अविवेकी, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में क्या अंतर है, आज आप लोग एक नई बात सुनोगे, सुने भी होंगे, मेरे लिए नई बात है। लघु वासुदेव मननम में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं आचार्य। ऐसे तो ये बात आएगी आगे, लेकिन अभी से ध्यान में बैठा लीजिए। विवेकी मतलब ज्ञानी और अविवेकी मतलब अज्ञानी, दोनों में क्या अंतर है? तो कल ये विचार हुआ कि बाहर के व्यवहार के दृष्टि से तो दोनों में फर्क नहीं दिखता है, लेकिन आंतरिक तौर पर विचार करें तो ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क है। ज्ञानी बाहर के व्यवहारों को करते हुए भी अंदर से प्रसन्न रहते, और अज्ञानी बाहर से यदि प्रसन्न भी दिखे तो अंदर से कहीं न कहीं वह अप्रसन्न रहता है, दुखी रहते। इसको अब दूसरे तरह से देख सकते हैं, जिसके जीवन में ज्ञान की तो छाया दिखे लेकिन अज्ञान वाला स्वभाव रहे, वो हो गए अज्ञानी। और जिसके जीवन में ज्ञान का स्वभाव हो और अज्ञान की छाया दिखे, वो है ज्ञानी। इसको और भी परिष्कृत रूप में कह सकते हैं कि विशेष रूप से जिसको हम कहते हैं अत्याशक्ति, क्या नाम है? अत्याशक्ति, अति आसक्ति। सामान्य आसक्ति हो, लगाव हो सज्जनों के प्रति, ज्ञानी भी इतना तो मन चाह इच्छा रहती है कि कोई अच्छा आदमी आए तो बैठे बातचीत करे, और ऐसा कोई आ जाए, आग्रह तो नहीं है कि चला जाए, क्यों आया, बोलते तो नहीं है, लेकिन मन में लगता है कि जाए तो अच्छा ही है, विक्षेप का कारण तो है ही है, बोलेंगे नहीं। और सज्जन है तो ये भी नहीं कहेंगे कि तुम आते हो तो बहुत अच्छा लगता है, तुम यहीं रहा करो, ये भी नहीं बोलेंगे वो, लेकिन उसके आने से मन में ये प्रतीति होती रहती कि ये रहे तो अच्छा है। लेकिन हम लोग जो होते हैं ना, जो अच्छा लगता है बोलते, अरे आप आते हो ना, बहुत अच्छा लगता है, लगता है यहीं रहो आप। और वो जब आता है ना, कोई भी जो अपना अप्रिय व्यक्ति है, वो तो दिमाग खराब कर देता है, परेशान कर देता है, वो तो आता ही क्यों है, आ जाता है तो लगता है कब चला जाए। तो अपने को लगता है अच्छा, हमको ये चाह रहे हैं उसको नहीं चाहते, और कल यदि अपने से भी कुछ इनको विक्षेप हुआ, कोई गारंटी तो है नहीं कि हमेशा हम सुखी देंगे। तो जब ये उसके लिए बोलते हो, खड़ू से परेशान करता है, तो कल मेरे लिए भी तो बोलेंगे। इसलिए बोलते हैं आगतम स्वागतम कुर्यात गच्छन्तम न निवारेत। आए तो भाई आओ, बहुत अच्छा है, स्वागत कीजिए। और कोई जा ही रहा है तो उसको ज्यादा रोकने की कोशिश भी मत करो। जा रहा है ठीक है भाई, कोई काम होगा आपका, अच्छी बात है, आ गए तो चलो अच्छा हुआ आए। क्यों नहीं आते हो और क्यों आते हो, दोनों ही बोलना अच्छा नहीं है। जो बोलता है क्यों नहीं आते हो, वही कभी बोल सकता है क्यों आते हो। और जो हमारे आवागमन के प्रति समभाव में रहे, आए तो स्वीकार करते आओ, अच्छी बात है, और जाते हो ठीक है भाई, कोई काम होगा जाओ। ऐसे सहज वृत्ति में जब रहने लग जाए ना, तो उनके अंदर ज्ञान में निष्ठा होने लगती है, और अज्ञान तो जो छाया बोला वो भी एक उपचार मात्र है, आगे जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति वाले के स्वभाव में, अर्थात उसका स्वरूप क्यों है अलग अलग, दो नाम क्यों दिया, जब मुक्ति तो दोनों जगह है ही, लेकिन एक जगह जीवन है और एक जगह विदेह है, तो इसमें भी कुछ फर्क है, वो सुस्पष्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा यहां ये विचार चल रहा है कि कल बता दिया कि आंतरिक तौर पर ज्ञानी और अज्ञानी की वजह से दोनों में विशेषता है, फर्क है। बाहर के व्यापारिक दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से दोनों एक समान दिखने पर भी आंतरिक प्रतीति में दोनों में फर्क है। ये भेद हुआ एक। तो आज कह रहे हैं कि एवं विवेकी अविवेकिनो हो बहुभेदो अस्ति। केवल आंतरिक व्यवहार और बाहर के व्यवहार को लेकर तो भेद ही दोनों में, लेकिन इससे अतिरिक्त बाहर के व्यवहारों में भी बहुत सारे भेद हैं। एक ही तराजू में सबको मत तौलना, ये कहने जा रहे हैं। विचार ये माने, यदि विचार किया जाए दोनों को, बाहर के व्यवहार को देखकर, क्या दो बहुत सारे भेद हैं। तो बाह्य व्यापारेण अपि न साम्यम, बाहर के व्यापार की दृष्टि से भी दोनों में समता नहीं है, दोनों एकदम अलग अलग रास्ते में चलने वाले हैं। विवेकी प्रपंचम सर्वम अपि मिथ्या इति निश्चित्य। विवेकी इस समस्त प्रपंच को देख करके क्या सोचता है, सर्वम मिथ्या, ये सब के सब मिथ्या है। ऐसा निश्चय करके वह प्रारब्ध भोगम अपि, अपने प्रारब्ध भोग को भी स्वप्न भोग तुल्यम पश्यति। ये है विवेकी के जीवन का जो स्वभाव है कि समस्त प्रपंच को मिथ्या समझते हुए, और जो प्रारब्ध भोग हम लोग मानते हैं उस प्रारब्ध भोगम अपि, उस भोग को भी वह स्वप्न भोग तुल्यम, जैसे हम लोग अपने सपने के प्रति कैसे रहते हैं, कुछ सोचते हैं ज्यादा, याद भी नहीं रहता है कई बार तो सपना क्या देखा, और कभी ताजा रहता है तो दो चार को बता भी देते हैं, आज मैंने ये देखा वो देखा। तो जैसे उस स्वप्न के प्रति हम लोगों के मन में कोई लगाव नहीं होता है कि हमने ये क्यों नहीं देखा अथवा ये क्यों देखा, या जो मैं देखना चाहता था वो नहीं देख पाया, जो नहीं देखना चाहता था वो क्यों दिखाया, बस वहां पराधीनता है। जागृत अवस्था में प्रारब्ध के अधीन है, स्वप्न अवस्था भी देखा जाए तो प्रारब्ध के अंतर्गत ही आता है सब। और क्योंकि मन की ही सारी सृष्टि है, स्वाप्निक जो जगत है, स्वप्न काल का जो व्यवहार है वो सब के सब मन ही तो करता है, और मन है सूक्ष्म। जागृत अवस्था में इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का प्रत्याहरण हुआ और वो संस्कार हमारे मन में पड़ा, और सपने में जाकर के उसको हमने देखा, और कभी कभी जब जागृत अवस्था की चीजों का भी संस्कार नहीं होता और ऐसी चीजों को जब हम सपने में देखते हैं तो लगता है ये तो हमने कभी देखा सुना नहीं था, ये कैसे दिखाई दिया, तो वहां फिर पूर्व जन्म का अनुमान कर लेते हैं, पिछले जन्म का कोई संस्कार होगा जो इस जन्म में स्वप्न में आकर के दिखा गया। कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तुरंत हम फोन करते हैं, भाई आप ठीक ठाक हो, सामने वाले चौंक जाते हैं, क्यों आज फोन किया, हालचाल क्यों पूछा, अब पूछो कि क्यों, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, बोलते हैं नहीं नहीं बस ऐसे ही है, नहीं बताना भी ठीक है, उनको और टेंशन हो जाए कि मेरे को इसने स्वप्न में क्यों देखा ऐसा, इससे अच्छा है हाँ बस ऐसे हालचाल पूछने के लिए किया, और यदि सामने वाला टेंशन लेने वाला नहीं है तो बता भी सकते हो कि आज मैंने सपने में थोड़ा आपको ऐसा देखा था, इसे चिंता हो गई कि फोन करके पूछ लेता हूं ठीक ठाक तो है कि नहीं, दोनों बातें हैं। और कहीं भी नहीं भी पूछने का समय मिला या आप नहीं करते हो बात, उनसे संपर्क नहीं है, और दो दिन के बाद घटना घटी, बोले हाँ हमने तीन दिन पहले सपना देखा था उनके बारे में, तभी मुझे मालूम पड़ गया था मामला कुछ गड़बड़ है, अब यहां सब हम लोग ठीक ठाक है, कोई ऐसे चला जाए तो यहां कौन सा मामला गड़बड़ है, पता ही नहीं चलता, अपने बारे में नहीं मालूम है। क्षणार्धम नहीं बजाना विधाता किम विधास्यति, एक क्षण का पता नहीं किसी को। देखो भगवान की क्या लीला है, कुछ नहीं पता है हम लोगों को, तब तो हम लोगों का ये हाल है, और यदि पता होता तो क्या करते, फिर तो हम लोगों की स्थिति अलग होती, कुछ और ही करते। तो स्वप्न भोग तुल्यम पश्यति प्रारब्ध भोगम अपि, वो जो है जो संसार को प्रपंच को मिथ्या दृष्टि से देखते हैं, विचार करते रहते हैं, वो प्रारब्ध भोग को भी सपने की तरह ही समझते हैं। लेकिन इससे विपरीत जो अविवेकी है, अविवेकी तो प्रपंच सत्य है, उसके दृष्टि में प्रपंच क्या है, सत्य है। आत्मनः सुख दुखानुभवोपि सत्य एव पश्यति, आत्मा में होने वाले सुख और दुख का जो अनुभव है उसको भी वह सत्य ही समझता है। आत्मा मतलब मन ले सकते। एवं विवेकी नाम अपि शरीर परिग्रह वशाद दुखम अस्त्येव, इसलिए विवेकी हो और अविवेकी हो दोनों के विचार में तो बहुत फर्क है। एक ने प्रपंच को मिथ्या समझना शुरू किया और एक जो है प्रपंच को सत्य समझते हैं, फिर भी दोनों शरीर के परिग्रह होने के कारण, शरीर प्राप्त होने के कारण दुख तो दोनों को है ही। इसमें ये नियम बनाया कि जहां जहां शरीर का परिग्रह है वहां वहां दुख अनिवार्य है, दुख होगा ही। यहां तक कि सशरीरत्वे दुख नियम, सशरीर होने पर दुख लागू होता है नियमतः, नियम से। वो कैसे, बोले देवता आदि भी दुखी रहते हैं, देवताओं को भी दुख मिलता है, मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो। देवानामपि वज्रहस्तः पुरंदर, देवताओं में आता है कि वज्रधारी इंद्र, देवताओं के राजा जो इंद्र हैं वो वज्र धारण करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि देवता भी शरीर वाले होते हैं, तभी तो वज्र धारण करेंगे हाथ में, तो शरीर का प्रमाण तो इस वचन से मिल गया। इत्यादि वेद वचनेषु शरीर परिग्रह दर्शनात् दुखम अस्त्येव, जब वज्रधारी हैं शरीर वाले हैं तो वहां भी दुख लागू होगा ही। अच्छा, आप लोग मानते हो कि नहीं मानते, देवता भी दुखी होते हैं, मानते हैं? तब स्वर्ग जाना चाहोगे? जिस दुख से छूट करके हम स्वर्ग पाना चाहते हैं, जब उस स्वर्ग में भी दुख ही है, फिर फायदा क्या वहां जाकर के? अमेरिका इंग्लैंड में लोग मरते कि नहीं मरते, फिर भी हम लोग जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते? बीमार भी होते हैं, सब कुछ होता है। स्वर्ग में तो यहां तक बताया कि हमेशा एक जैसा रहता है तो लोग बोर हो जाते हैं। जैसे इंग्लैंड अमेरिका में लोग बोर होते हैं, उनको एक जैसा ही दिखता है, आप वहां किसी मकान में फर्क नहीं देखोगे, पता नहीं क्या है। भारत में तो कहीं कूड़े का ढेर मिलता है तो कहीं बगीचा मिलता है, कहीं छोटा मकान, कहीं बड़ा मकान, कहीं अलग कलर, वहां ये सब कुछ है ही नहीं, लोग बोर हो जाते हैं। तो उससे भी ज्यादा बोरियत महसूस कहां होती है, स्वर्ग में। एक ही जैसा है, 12 महीना ठंडी हो तो क्या अच्छा लगेगा, और 12 महीना गर्मी हो तो भी अच्छा लगेगा? बदलते हुए ऋतु आती रहती है, सर्दी गर्मी बरसात, कभी ज्यादा गर्मी कभी कम गर्मी, कभी बहुत ठंडी कभी कम ठंडी। तो इन चीजों से हम लोगों को पता नहीं चलता, समय निकल जाता है। और एक ही जैसा हो, लेकिन ज्ञान की जो बात आती है ना, जब वहां ज्ञानी का कैसा जीवन होता है ये आप आगे सुनेंगे। यहां अभी ये बता रहे हैं कि देवता लोग भले ही स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन उनके वहां भी दुख देखा जाता है। और उनके वहां के दुखों का स्वरूप क्या है, तो कहते हैं कथमिति चेत, शरीर परिग्रह, शरीर ग्रहण करने के कारण देवता जो दुखी होते उनका दुख का स्वरूप क्या है, तो अन्योन्यम युद्धतः, आपस में युद्ध करते हुए कोप शापाभ्याम, क्रोध भी करते हैं श्राप भी देते हैं, असुर राक्षस उपद्रवात, असुरों के राक्षसों के उपद्रव से परेशान रहते हैं, और तो और पुण्य कर्म फल नाशे सती। देवता कब तक देवता बन के स्वर्ग में रहते हैं, जब तक उनके पुण्य कर्म हैं, और उस पुण्य कर्म के फल नाश होने के बाद छीणे पुण्य जाना पड़ेगा भाई, फिर कहीं मृत्यु लोक में, मर्त्यलोकम विशन्ति, प्रवेश करते हैं मृत्यु लोक में। तो भावी अधः पात भयात, कर्म फल के नष्ट होने के बाद भविष्य में मेरा पतन होगा, मुझे इस देवलोक से छोड़कर मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, ये भी भय देखा गया उनमें, ये भी एक दुख है। तो राक्षस असुर के उपद्रव से होने वाला दुख, परस्पर क्रोध करना, श्राप देना, ये दुख, और सबसे बड़ा दुख कि एक न एक दिन हमें इस देवलोक से नीचे गिरना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, ये सारे दुख उन देवताओं में भी देखे जाते हैं। ये शंका किया, कथम दुखितानाम अपि तेषाम इतरे ही उपास्यत्वम्। जब ये देवता लोग स्वयं दुखी हैं तो इनकी उपासना फिर लोग क्यों करते हैं, जब वो स्वयं दुखी हैं। कथम वा सुखदातृत्वम इति चेत, उनकी उपासना लोग क्यों करते हैं कि ये सुख देंगे, जब बेचारे वो स्वयं दुखी है तो कहां से हमें सुख देंगे, जिसके पास सुख होगा वही तो सुख देगा, तो देवता फिर कैसे सुख देते होंगे, क्यों उनकी उपासना करते हैं। कहते हैं, देखो देवता की बात छोड़ो, अस्मिन लोके राज प्रवृत्ति नाम दुखी नाम अपि स्वाश्रित परिपालनादिकम यथा तथा इति गेयम्। तुम कहते हो कि देवता दुखी है तो सुख कैसे देते होंगे, उनकी उपासना करने का क्या फायदा। अरे वो तो ऊपर की बात है, मृत्यु लोक में भी जो राजा महाराजा लोग हैं ना, सेठ लोग, ये भी दुखी रहते कि नहीं रहते, लेकिन ये भी अपने अधीन कर्मचारियों का पालन पोषण करते कि नहीं। तो जब यहां के लोग भी दुखी होते हुए भी अपने आश्रित जनों का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही देवता लोग भी भले ही आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि मृत्यु लोक के प्राणी बेचारे हैं। हम लोग क्या हैं देवताओं की दृष्टि में, बेचारे, उनको हमारे ऊपर दया आती है, हमारा पालन पोषण करते हैं, जब हम उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं। अच्छा, जैसे कोई आपका सेवक, आपके अधीन रहने वाला व्यक्ति आपको कह दे, अरे बाबू जी आप क्या हमको दोगे, आप स्वयं दुखी हो, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, और कहे बाबू जी बस आप ही हैं सब कुछ हमारे, भले वो जानता भी कि ये भी दुखी है, फिर भी वो आपको क्या कर रहा है, बस चढ़ा कर रखता है, बाबू जी माए बाप आप ही हैं सब हमारे, तो आपको भी लगता है हाँ ये दया का पात्र है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो ऐसे देवता के सामने जो हम लोग करते हैं ना, इंद्राय स्वाहा, हाँ ये सब जो होता है बोलते हैं ये ठीक है, ये गिड़गिड़ा रहा है, इसके लिए अपने कुछ करना है। हाँ यदि कहीं देवता भी कुछ नहीं, मोक्ष प्राप्त करना है, फिर देवता ऐसे मोक्ष प्राप्त करने वाले के मार्ग में विघ्न डालते हैं। इसलिए वेदांत में कहते हैं कि आत्मज्ञान के लिए इन देवताओं को भी मना के रखना बहुत जरूरी है। कर्मचारी हो, सब कुछ हो, जीवन में सुखी रहना है, तो जब तक बाबू जी माए बाप जी नहीं करोगे, ये चैन से नहीं रहने देंगे हमको, ये तो ऐसे भी नहीं रहने देना चाहते, और यदि हम ज्यादा अकड़ के रहेंगे तो और नहीं रहने देंगे। तो देवता भी यही देखते हैं कि अब तो ये मोक्ष प्राप्त कर लेगा, हमसे भी ऊपर उठ जाएगा, तो ये अपने से ऊपर न उठे तो उसके मार्ग में विघ्न पैदा करते हैं। अब विघ्न पैदा करने का मतलब ही हमारे शरीर में आदि व्याधि रोग, इंद्रिय आदि में सामर्थ्यहीनता ये सब आने लगती है, देवता अपना अनुग्रह करना बंद कर देते हैं। इसलिए इन देवताओं को प्रसन्न करना जरूरी है। दुर्जनम प्रथमम बंदे, सज्जनम तदनंतरम। जो खतरनाक व्यक्ति है ना उसको पहले पुचकार लो, क्योंकि वही खतरनाक है ना, सज्जन आदमी आपको नुकसान नहीं करेंगे, वो तो सज्जन है। तो दुर्जनम प्रथमम बंदे, सज्जनम तदनंतरम। और दृष्टांत तो दिया, थोड़ा अटपटा है, समाज में बोलने लायक तो नहीं है, लेकिन यहां प्रसंग आ गया तो बोल देता हूं। मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुदा प्रक्षालनम यथा। टॉयलेट जाओगे तो ब्रश करोगे, बाद में पहले टॉयलेट को तो धोओगे। तो ये दृष्टांत है कि जैसे वहां गंदगी की सफाई पहले करनी पड़ती है, बाद में मुंह हाथ धोया जाता है, उसी प्रकार से दुर्जनों को मनाना पहले जरूरी है, सज्जन तो अपने हैं ही, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो ये दृष्टांत दिया है वहां पर, दुर्जनम प्रथमम बंदे, सज्जनम तदनंतरम मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुदा प्रक्षालनम यथा। जब एक ऋषि के बारे में कई श्रुति में उपाख्यान आता है ना, जहां पर देवराज इंद्र को ब्रह्मज्ञान का उपदेश दे रहे थे, तो इंद्र को ही दृष्टांत बना के बोलते हैं कि हे इंद्र, तुम्हारा जो पद है ना, कुत्ते के मूत्र के समान है। इंद्र बोलते, एक बार तो आपने दृष्टांत दिया, दोबारा दोगे ना मैं आपके गर्दन काट दूंगा। बोले, बस हो गया, तुम्हें ज्ञान मिल गया, तुम हो गए ज्ञानी। क्योंकि जब तक तुम्हारे अपने पद में शोभन बुद्धि रहेगी, तब तक परमात्मा की तरफ बढ़ोगे कैसे। और हम लोगों के भी यही समस्या है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो हम मानते हैं, जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, उसके प्रति जो आग्रह बुद्धि है, उसका परित्याग हम नहीं कर पाते। और इसलिए ज्ञानी जैसे बातें तो हम करते हैं, प्रज्ञा वादांश भाषा से। अर्जुन को भगवान बोलते हैं, तू बात तो बड़े ज्ञानी जैसे कर रहा है, अब तुम्हें क्या हो गया। तो वही हाल है हम लोगों का, बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जिसमें आग्रह है ना, उससे हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इसलिए इस ज्ञान का जो आनंद स्वरूप है ना, ज्ञान तो हो गया, अपने को भी लगता है हुआ है, सुना भी हूं, लेकिन आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि अनात्म वस्तुओं में अभी दुराग्रह है, और जब तक ये दुराग्रह नहीं छूटेगा, तब तक आत्मा की तरफ हम बढ़ नहीं सकते, आनंद का अनुभव कर नहीं सकते। तो ये दृष्टांत दिया कि देवता भले ही दुखी क्यों न हो, उनके उपासना करने वाले जो भी होते हैं, उनको तो वो सुख देते ही हैं। उसी प्रकार से जैसे लोक के सेठ लोग, राजा लोग भी अपने आश्रित लोगों को कुछ न कुछ दे करके उनको सुख देने का प्रयास करते ही हैं, ठीक उसी प्रकार से मान लो, देवलोके देवा आनंद रूपा तिष्ठन्ति इति श्रुतेर देवाहा दुःखं सर्वं अपि अंतःकरण धर्मं मत्वा आनंद स्वरूपं सदा अनुभवन्त एव तिष्ठन्ति इति तात्पर्यम्। देवताओं के दुख और मनुष्यों के दुख में थोड़ा अंतर है। मनुष्य लोक में विवेकी और अविवेकी के दुख में क्या अंतर है, ये आप लोगों ने सुना। अब यहां हम मनुष्यों के दुख और देवताओं के दुख में भी क्या अंतर है, वो यहां बता रहे हैं आचार्य कि देवलोके देवा आनंद रूपा तिष्ठन्ति। देवलोक में देवता लोग क्या रहते हैं, आनंदित रहते हैं, सुखी रहते हैं, ये भी श्रुति में सुना गया है। तो फिर आप कहते हैं कि देवता दुखी है, तो ये दोनों बातें कैसे हो सकती है। तो कहते हैं कि देखो, देवता लोग रहते तो आनंद रूप से ही हैं, लेकिन जो उनके वहां दुख होता भी है ना, उन दुखों को देवता लोग ये मान करके चलते हैं कि ये अंतःकरण का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। और हम लोग यहां क्या करते हैं, अपने दुख को आत्मा का ही दुख मान लेते हैं, ये अंतःकरण का धर्म है, ये विवेक नहीं कर पाते। ये विवेक कहां करते हैं, प्रेमपुरी में आने के बाद। अब मालूम पड़ा है कि मन का धर्म क्या है, बुद्धि का धर्म क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, ये तो यहां आने के बाद पता चलता है ना। सामान्यतया सब लोग क्या सोचते हैं कि आत्मा ही दुखी सुखी आदि होता है। अंतःकरण धर्म मत्वा आत्मानंद स्वरूपम सदा अनुभवंत एव तिष्ठन्ति इति तात्पर्यम्। तो देवता लोग जो हमेशा आनंद रूप से रहते हैं स्वर्ग में, इसका मतलब है कि भले असुरों से, राक्षसों के उपद्रव से, आपस में क्रोध वशात, कोप वशात परस्पर श्राप देते हो, देवताओं को छिपना भी पड़ता है, भागना भी पड़ता है। देख, पुराणों में कथा तो आती है, देवराज इंद्र को भी ब्रह्म हत्या का लगा, तो मानसरोवर में जाकर के कमल के नाल में जाकर के छिपके रहे, फिर कैसे दोबारा वापस बुलाए गए, जब तक था वो कर्म फल तब तक प्रायश्चित किया। ये भी आप सुनते हो कौशित की उपनिषद में, देवराज इंद्र के द्वारा हत्या होने पर भी उनके चेहरे में ब्रह्म हत्या जनित कोई मलिनता नहीं दिखाई दिया, अर्थात उस कर्म का कर्ता अपने को माना ही नहीं। देवताओं का राजा इंद्र, एक इंद्र वो अलग है और यहां हम जितने भी बैठे हम भी सब लोग क्या हैं, इंद्र ही है। इंद्र का असली नाम क्या है कोई पूछे तो, वो तो पर्यायवाची हो गया, इंद्र में ही नाम छिपा हुआ है, इदंद्र। इदंद्र का मतलब इदम का जो दृष्टा, तो इदम रूप से जो जगत दिखाई दे रहा है इसका दृष्टा हम लोग हैं कि नहीं है, तो हम सब के सब क्या हैं, इदंद्र। लेकिन इदंद्र बड़ा नाम हो गया तो शॉर्ट नाम नहीं लिखते हम लोग, ये तभी से लिखना शुरू हो गया। तो इदंद्र को इदंद्र बोलो तो उनको भी बुरा लगता है, इंद्र बोलने से खुश होते हैं। राम प्रसाद को रामू बोलो, श्याम प्रसाद को श्यामू बोलो तो वो फिर अच्छा लगता है। और ऐसे इंद्र को भी शॉर्ट नेम ही अच्छा लगता है इंद्र, वास्तव में सबके सब क्या है, इदंद्र। इदम का जो दृष्टा होगा और अपने आत्मा में जो स्थित होता है वही इंद्र है, और हम सब के सब इंद्र ही हैं। लेकिन इस इंद्रत्व को प्राप्त करने के लिए देवताओं के राजा वहां इंद्र है और यहां पर ये इंद्र जो है आत्मा का राजा है, अर्थात आत्मा में स्थित हो चुका है, इसलिए हम सब भी इंद्र ही हैं। तो आत्मानंद स्वरूपम सदा अनुभवंत एव तिष्ठन्ति इति तात्पर्य। अब जो श्रुति में एक उदाहरण आता है कि तेषाम अपि दुःखम अस्ति इति वदन्त्याः ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन् महत्यरणवे प्रापतन। ऐत्रे ब्राह्मण का कहां का ये उदाहरण दे रहे हैं, वहां ये प्रकरण उसमें प्रकरण में मिलता है विषय कि ता एता देवता सृष्टा अस्मिन् महति अरणवे प्रापतन। श्रुति कहती है कि ईश्वर के द्वारा उत्पादित उत्पन्न किए हुए ये जितने भी महान देवगण हैं ये सब के सब इस विस्तृत संसार सागर में गिर पड़े। क्या हुआ, श्रुति का उदाहरण दे रहे हैं कि उस ईश्वर परमेश्वर के द्वारा उत्पादित ये महान देवगण संसार सागर में गिर पड़े। इससे मालूम पड़ता है कि देवताओं को भी गिरना पड़ता है, मृत्युलोक में आना पड़ता है, ईश्वर के अधीन है, तो हमें देवता न बन करके विदेह मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। देवता बनने के लिए प्रयास करना बेकार है, क्योंकि इसमें भी उठना गिरना सुख दुख सब कुछ है, तो ऐसे देवता बन के क्या फायदा, कोई फायदा है? अरे हमको बनाई कौन रहा है, अब मालूम पड़ गया ना कि सब दुख ही है, इसका भी कोई अंत है नहीं, तो हम लोग तो अब किसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमेशा हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा मिल जाए। बार बार दुख जब चला जाता है बड़ी खुशी होती है, लेकिन दुख के वापिस आने की जो संभावना रहती है ना, वो हमारे गए हुए दुख को भी याद ही कराता है, लगता नहीं कि वो दुख गया क्योंकि आने वाला है। फिर इस चिंता में तात्कालिक हटे हुए दुख से भी वास्तविक सुख का अनुभव नहीं हो पाता। उदाहरण के तौर पर अभी हम लोग यहां बैठे हैं, मन बुद्धि शरीर सब कुछ ठीक ठाक है ना, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मन में कुछ न कुछ भय तो है। क्या भय है? कल तो जन्माष्टमी थी नहीं, आज भी सो रहे हैं सब लोग, लगता है भगवान के जब तक छठी नहीं मना लेंगे तब तक ऐसे चलेगा क्या। सबके मन में कुछ न कुछ भय, भयाक्रांत, और भय नहीं तो जो बार बार सुनते हैं वो है मृत्यु भय। मारो सु थसे, बोले जो थसे हारो थसे, चिंता मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। एक बार लग गए कल्याण के मार्ग में नहीं कश्चित, नहीं वो है ना तू, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, जो एक बार कल्याण के मार्ग में चलता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। इसीलिए विदेह मुक्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए। यहां तक हो गया विवेकी अविवेकी और शरीरधारी देवता आदि इन सब में होने वाले दुखों को देखकर ये तो पता चल गया कि जब तक शरीर है तब तक इन दुखों से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। अब जो मुक्ति की बात आती है तो मुक्ति भी अलग अलग सुनाई देती है। ध्रुव को भगवान मिले और आज भी वो ध्रुव लोक में ध्रुव तारा बने हुए बैठे हैं, ये कौन सी मुक्ति है? ननु अशरीरम उक्ते एव मुक्तित्वम चेत, आप कहते हैं कि विदेह मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, देह रहित जो मुक्ति है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो आकाश में नक्षत्र आदि में दिखने वाले जो सशरीर देवता आदि मुक्त कहे जाते हैं वो कौन सी मुक्ति है? तो सशरीरा आकाशे नक्षत्र रूपेण परिदृश्यमानाः केचन देवा मुक्ता इति मनुष्यैः कथम कथ्यन्त इति चेत। तो आपने पूर्व प्रकरण में कह दिया कि विदेह मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, तो पुण्य करने वाले पुण्यात्मा लोग सशरीर मुक्त हो गए ये भी तो शास्त्रों में सुना जाता है। तो ये कौन सी मुक्ति है जो आकाश नक्षत्र रूप में ध्रुव आदि तारा ये सब जो दिखाई देते हैं? कहते हैं सुनो, जो तुम कह रहे हो तुम्हारा कहना भी ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें ये नहीं मालूम है कि मुक्ति का भी स्वरूप अलग अलग है। सालोक्यम सामीप्यम सारूप्यम और सायुज्यम इति चतुर्विधा मुक्ति ही, ये चार प्रकार की मुक्ति है। तो इसमें कौन सी मुक्ति चाहिए? हाँ, एक तो लेना पड़ेगा ना, यहां प्रकरण जिसका चल रहा है, ना आपको लेना है ना हम दे सकते हैं, बात चल रही है। जब पूछूं ले लो तो हाँ कहना ये ले लेते। हाँ, एक आदमी पार्क में जाके अपने दोस्त को बोलता है, यार मैं बहुत टेंशन में हूं, क्या हुआ? घरवाली बहुत तंग करती है। क्या तंग करती है? खर्चा मांगती है, पैसा मांगती है। तो फिर क्या हुआ? बस मांगती है, मैं देता थोड़ा ही हूं, यही परेशानी है उसकी। देना पड़ नहीं रहा है लेकिन परेशान पूरा है वो। शुरू शुरू में जब शादी होती है तो फोन करके पूछते कुछ लाना तो नहीं है, और जब बार बार मंगवाने लगती है तो बाद में बोलते क्या बोला मैंने सुनता नहीं, मतलब तुम जाने तुम्हारा काम जाए। ये है संसार। सालोक्यम सामीप्यम सारूप्यम सायुज्यम इति चतुर्विधा मुक्ति ही। अब इन चारों मुक्ति के चार साधन भी बता रहे हैं। लघु वासुदेव मननम आप लोग सुन रहे हो, कुछ इसके अपनी विशेषता तो है ही। कल कोई बोल रहा था आप क्या सुना रहे, हमने कहा लघु वासुदेव मननम, बोलते ये तो हमने कभी सुना नहीं था। मैंने कहा पैदा होने के बाद तो कोई न गीता सुना होता है न उपनिषद सुना होता है, सुनते सुनते सब मालूम पड़ता है। अब आप लोगों को मालूम तो पड़ गया लघु वासुदेव मननम भी कोई वेदांत का ग्रंथ है। शुरू में किसी को लगा वासुदेव भगवान कृष्ण की चर्चा होगी, वो भी मान लो कृष्ण ही परमात्मा है, परमात्मा की चर्चा है। भाषा अलग होगी, शैली अलग होगी, बात तो वही है, आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा की एकता। और इतने सरलता से आचार्य ने लिखा है, इसको पढ़ो ना, इस पे नीचे हिंदी भी है और संस्कृत भी, इनकी इतनी कठिन नहीं, ये थोड़ा बहुत व्याकरण जिनको आता हो आराम से समझ सकते हैं क्या कह रहे हैं। तो जो ये चार प्रकार के मुक्ति है उसके लिए चार साधन भी बता दिए, चर्या क्रिया योगो ज्ञानम इति। चर्या क्रिया योग और ज्ञान चतुर्णाम क्रमेण साधनानि, ये चारों प्रकार के मुक्तियों के लिए ये चार साधन है। चर्या परिचर्या नहीं करते दिनचर्या, तो वही चर्या है। क्रिया तो सालोक्य के लिए चर्या, सामीप्य के लिए क्रिया, सारूप्य के लिए योग और सायुज के लिए ज्ञान। हर सायुज्यम गच्छति शिव सायुज्यम गच्छति, ये हमारे शिव जी की आरती में हम लोग गाते हैं। जय गंगाधर हर शिव जय गिरिजाधीश शिव जय गौरी नाथ त्वं मां पालय नित्यं त्वं मां पालय शंभु कृपया जगदीश। ओम हर 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 महादेव। ध्यानम आरति हृदये समये हृदये इति कृत्वा शिव हृदये इति कृत्वा हर सायुज्यम गच्छति शिव सायुज्यम गच्छति भक्त्याय श्रृणुते। ओम हर 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 महादेव। सायुज्य नाम की जो मुक्ति है ना, वो यहां पर आचार्य का अभिप्राय है कि जीवात्मा और परमात्मा की एकता जो होती है ज्ञान के द्वारा, उसी का नाम है सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मोक्ष। तो चर्या के द्वारा सालोक्य, क्रिया के द्वारा सामिप्य, योग के द्वारा सारूप्य और ज्ञान के द्वारा सायुज्य नामक मोक्ष प्राप्त होता है, इस मुक्ति की प्राप्ति होती है। चर्या का स्वरूप क्या है, कैसी चर्या होनी चाहिए भगवान के लिए? भगवत कैंकर्य रूप दास भावस चर्या। भगवत कैंकर्य, भगवान की किंकरता, दासता, दास भाव में रहना, जैसे नवधा भक्ति आदि में भी इसका नाम आता है। और दास का उल्टा करो तो बनता है सदा। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने भी लिख दिया। हनुमान जी बोलते दास दृष्टिया देह दृष्टिया तू दासो हम, शरीर की दृष्टि से मैं आपका दास हूं और आत्मा की दृष्टि से मैं आपका ही स्वरूप हूं। तो व्यवहार में भी यही चलता है, उपाधिक भेद रहता है। माता है मां का काम करेगी, पिता पिता के काम करेंगे, आत्मा की दृष्टि से सब एक ही है। समस्या यहां आ जाती है कि ये मैं क्यों ना करूं ये, और ये मैं ही क्यों करूं, तब जाके झंझट शुरू हो जाता है। तो भगवत कैंकर्य रूप दास भावस चर्या, भगवान की सेवा में दास भाव से रहना। केवल दास भाव ही नहीं, सेवा भी करनी, और जहां सेवा करते वहां दास भाव भी नहीं हो पाता। कई बार तो सेवा करते करते सेवक जो है वही मालिक बनने की कोशिश करने लगता है, तो वहां फिर प्रेम समाप्त हो जाता है। प्रेम होगा तो ये मन में कभी भाव आएगा ही नहीं कि मैं इनके दासता क्यों करूं। तो इसलिए राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, क्योंकि असबर दीन जानकी माता, ये सीता जी का दिया हुआ असबर आशीर्वाद है। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम जो है, तुम्हारे पास राम नाम का जो रसायन है, यही तुम्हारी जो है सेवा करने का एक तरीका है। राम रसायन तुम्हारे पास आ, इसलिए सदा रहो रघुपति के दासा। भगवान राम के नाम लेकर हनुमान जी सब काम करते हैं। अभी आपने एक हफ्ता लगातार 7 तारीख से 14 तारीख तक क्या था वो, अनुरक्त भरत और विरक्त हनुमान जी के माध्यम से रामायणी स्वामी राजराजेश्वरा जी ने बहुत कुछ सुनाया होगा। एक दिन मैंने भी सुना था, बढ़िया बोलते हैं। रामचरितमानस में ये सब विस्तार से वर्णन मिलता है। जहां भी नवधा भक्ति का प्रसंग आया, भागवत में भी, वहां पर भी इन चीजों की चर्चा हुई है, किस प्रकार से भगवान के सेवा में दास भाव से रह करके चर्चा की जाती है। एरोप्लेन में एयर होस्टेज थोड़ी देर के लिए चर्चा करती है, परिचारिका बोलते उनको, उनका नाम है परिचारिका, और उसी का शब्द बनता है परिचर्या। और परिचर्या का मतलब परितः अभितः समन्तात, दिन रात हर समय चारों ओर से परमात्मा के लिए ही सेवा में लगे रहना, यही है चर्या। जब बोलते दिनचर्या का मतलब है आपका दिन भर का आचरण क्या है, वो है दिनचर्या। दैनिक चर्या क्या है? दैनंदिन कार्य, दैनिक होने वाला, डेली वर्क। डे से डेली बनता है, डे मतलब दिन और डेली मतलब दैनिक, दिन और दैनिक। तो सालुक्य रूपी मुक्ति का साधन जो चर्या है वो हो गया भगवान के सेवा दास भाव से करना। क्रिया क्या है? तो शिव विष्णु आदि पूजा विधि क्रिया। पूजा करेंगे मानस पूजा तो बाद में, पहले तो बाहर के जो है ना बाह्य पूजा ये होना बहुत जरूरी है। और फिर बैठे बैठे आप रत्ने कल्पितमा सनम हिमजल ही करते रहो, अच्छा है। लेकिन उससे पहले पाद्यम अर्घ्यम आवाहन करो, बुलाओ, चरण धुलाओ, हाथ धुलाओ, आसन दो, बैठाओ, फिर उनको स्नान कराओ, फिर शरीर सब पोछो, इत्र चंदन आदि लगाओ, फिर भोग लगाओ, फल दो, नैवेद्य दो, दक्षिणा दो, और उसके बाद आरती करो, फिर प्रणाम करो, फिर कहो कि हे भगवान, जो है प्रार्थना पूर्वक आपको विसर्जन करना है विसर्जन करो, आगे रखना है हमेशा के लिए हमेशा के लिए रखो, दोनों होता है। अब गणपति बप्पा आ रहे हैं तो बोले गणपति बप्पा मोरिया, और समुद्र में डालने के बाद बोलते पुरचा बरसे लोकरिया। हाँ, बहुत लड्डू खा लिया, अब अगले साल ही आना, बीच में नहीं। तो इस तरह से हम करते हैं भगवान की आराधना। तो यहां गणेश जी का आवाहन होगा तो इसलिए गणेश चतुर्दशी को, चतुर्थी को आवाहन, तो चतुर्दशी को विसर्जन करते हैं। जो लोग एक दिन वाले गणेश जी होंगे जिनके पास, उसी दिन विसर्जन कर लेंगे। तो इस प्रकार से आवाहन विसर्जन पूर्वक जो आराधना होती है भगवान की, ये सब क्रिया का स्वरूप है और इसका फल है सामिप्य रूपी मुक्ति की प्राप्ति, ईश्वर की समीपता। सारूप्य जो योग है, योग के द्वारा सारूप्य नामक मोक्ष मिलता है। वह योग क्या है? तो यम नियम आदि अष्टांग योगो योग, आठ प्रकार का जो अष्टांग है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, उसमें भी पांच बहिरंग हैं, तीन अंतरंग हैं। पांच बहिरंग साधनों से ही वो तीन आंतरिक जो साधन है अर्थात जो योग है उसकी सिद्धि होती है, उसी में साध्य साधन भाव बना लेते हैं। ऐसे आठ अंग अष्टांग योग के द्वारा जो ईश्वर को रिझाया जाए, प्रसन्न किया जाए, उससे जो मिलने वाली मुक्ति है उसका नाम है सारूप्य। सालुक्य, सामिप्य, सारूप्य, तीन मुक्ति हो गई। तीनों के साधन हो गए चर्या, क्रिया और योग। चौथा जो है सायुज्य नामक मुक्ति, उसका साधन है ज्ञान। ज्ञान का क्या होना चाहिए? तो जीव परमेश्वर यो हो ऐक्य साक्षात्कारो ज्ञानम। ये आप लघुवासुदेव मरणम की जो पंक्ति है ना, याद रख लेना, लिख लो ये, जीव परमेश्वर यो हो ऐक्य साक्षात्कारो ज्ञानम। ज्ञान किसको बोलते हैं? जीव और परमेश्वर इन दोनों की एकता के बाद जो साक्षात्कार होता है उसका नाम है ज्ञान। जीव परमेश्वर यो हो ऐक्य साक्षात्कारो ज्ञानम। इससे सायुज्य नामक मोक्ष प्राप्त होता है। इसी को सायुज्य बोलते हैं, परमात्मा में लीन हो जाना। जो जीवात्मा अभी तक उपाधि के कारण अलग दिख रहा था वह उपाधि नष्ट हो गई और वह परमात्मा में क्या हो गया? लीन हो गया। जैसे नमक की डली पानी में घुल मिल जाने के बाद पता नहीं चलता है कि वो नमक कहाँ गया, ठीक उसी प्रकार से चलो नमक का तो स्वाद फिर भी अलग रह ही जाता है, लेकिन पानी की बूंद पानी से जो अलग थी और उसको जब पानी में मिला दिया अब तो उसको अलग से नहीं जान सकते। नमक को तो जीवा से जान भी सकते थे कि नमक इसमें पड़ा है जो घुला है इसी में, लेकिन जो पानी की बूंद मिली है तो उसी में लेकिन बता सकते हो क्या, एकदम आत्मसात हो गया, मिल गया पूरी तरह से। उसी प्रकार से यह जो जीवात्मा है परमात्मा में लीन हो गया, इसी को बोलते हैं मोक्ष। और ये मोक्ष तब मिलेगा जब जागते रहोगे, और कहीं चले गए समाधि में तो उनके लिए बता रहे अभी क्या अंतर है। बोलते सशरीर मुक्ति जो जीवन मुक्त है, और अशरीर जो मुक्ति है वो विदेह मुक्ति है। तो सुषुप्ति अवस्था में जो सुख का अनुभव होता है सशरीर होता है कि अशरीर होता है, पक्का बोलना। कोई शरीर रहता है क्या वहां? नहीं रहता है, इसलिए अशरीर ही सुख है, शरीर रहित सुख। स्वानुभव सुखानुभव जो है वो अशरीरी है, और जागृत और स्वप्न में तो सशरीर है, और विदेह मुक्ति में जो सुख है वो भी सशरीरी है कि अशरीरी है? विदेह मुक्ति है, विदेही हो गया ना, देह रहित हो गया, अशरीरी हुआ ना। तो सुषुप्ति अवस्था वाला मोक्ष चाहिए या विदेह मुक्ति वाला मोक्ष चाहिए? भाई जब दोनों में अशरीर है तो दोनों में अंतर क्या हुआ? सुषुप्ति अवस्था में दो बातें हैं, अज्ञान तो है ही, दूसरा है पुनः उत्थान, उठेगा, अर्थात वहां जन्म लेना ही हुआ, एक तरह से छूटा नहीं अभी शरीर से। और विदेह मुक्ति में अज्ञान की हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति है। तो कई बार लोग भ्रम से कह सकते हैं जब बिना शरीर का सुख चाहिए सुषुप्ति में मिल ही रहा है, फिर अलग से विदेह मुक्ति की बात क्यों की जाती है? उस शंका के निवारण के लिए आगे जो प्रश्न किया है कि तत्राद्यास तिस्रयो मुक्तयो मुख्या न भवन्ति, सालोक्य सामिप्य सारूप्य और सायुज्य में इन चारों मुक्तियों में तीन मुक्ति मुख्य नहीं है, एक ही मुक्ति मुख्य है और वो है सायुज्य। क्यों? क्योंकि सायुज्यम एव पुनरावृत्ति संभवात्, सालोक्य सामिप्य और सारूप्य में पुनरावृत्ति है, लौट के आना पड़ेगा। लेकिन सायुज्यम एवं मुख्या मुक्ति, सायुज्य मुख्य, सायुज्य ही मुख्य मुक्ति है। क्यों? पुनरावृत्ति वर्जनात्, वहां पर फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, लौट के नहीं आना पड़ता। जहां कहीं ये उदाहरण मिलता है कि योगेना सायुज्यम इति, योग के द्वारा सायुज्य नामक मोक्ष मिलता है, बोले वहां पर भी निर्गुण ब्रह्म विषयक योग लेना चाहिए, ये अष्टांग योग नहीं। कौन सा योग? निर्गुण ब्रह्म विषयक योग। योग का मतलब होता है जुड़ना, युज्यते इति योग, और आजकल तो नाम रख दे योगा, झंझट ही खत्म हो गया। ये योग है और वो है योगा, वो तो बॉडी फिटनेस के लिए है, मन को शांत कर सकते हो, वहां मुक्ति की बात नहीं होती है। और यहां पर जो है इसलिए भगवान सब जगह कह रहे हैं श्रीमद भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम और योग शास्त्र। ब्रह्म विद्या है लेकिन कौन सा? योग शास्त्र, जिस विद्या के द्वारा परमात्मा से जुड़ जाए, योग कर देवे, जोड़ देवे, उसका नाम है योग शास्त्र। तो इसलिए ये योग पतंजलि के अलग हैं और ये योग शास्त्र भी यही है जो ब्रह्म विद्या रूपी योग। तो योगे न सायुज्यम का अर्थ लेना चाहिए ब्रह्म विषयक योग के द्वारा भी पुनरावृत्ति वर्जनात् नामक मोक्ष मिलता है, और ये तीनों में पुनरावृत्ति संभवात्, पुनः आवृत्ति की संभावना है और उसमें संभावना नहीं है, इसलिए वो तीन हो गए गौण और सायुज हो गए मुख्य। इस मुख्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए। वो कैसे? ये विचार फिर कल करेंगे। हरिओम।